16 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। पेरिस हमलों के सिलसिले में फ्रांस की पुलिस ने देश भर में करीब 150 जगहों पर छापे मारे।
La vérité, la lucidité nous oblige à dire, nous le disons, je le dis depuis des mois.
दक्षिण भारत में अब बादलों का रुख आंध्र प्रदेश की ओर और जाने माने अभिनेता सईद जाफरी का देहावसान। सुनवाएंगे उनसे एक पुरानी बातचीत।
कहने का हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम आपका टिकट भिजवाएं। तो उन्होंने कहा कि आप वो सर रिचर्ड एटनबरा के लिए गांधी के लिए आ रहे हैं पटेल का रोल करने के लिए, तो आप उन्हीं से कह दीजिए 1.5 महीने पहले आपको भेज दें। तो मैंने डिकी एटनबरा को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि डार्लिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास टिकट इज देयर फॉर यू।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पेरिस हमलों में मारे गए लोगों की याद में आज पूरे फ्रांस में एक मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला सोबोन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मौजूद रहे। इस बीच पेरिस हमलों की जांच कर रही पुलिस ने 167 जगहों पर छापे मारे हैं और फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कैजनोव ने बताया कि पूरे फ्रांस में करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं ने एक क्लाश्निकोफ, ऑटोमेटिक पिस्टल और कई रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए हैं। आयरलैंड में आज से समलैंगिक शादियों को आधिकारिक रूप से अनुमति मिल गई है। 6 महीने पहले हुए जनमत संग्रह के बाद कानून में बदलाव करने की इजाजत मिली थी। 2011 में आयरलैंड में सिविल पार्टनरशिप शुरू कर दी गई थी, लेकिन आज से ये समलैंगिक जोड़े शादी के लिए फास्ट ट्रैक अर्जी दे सकते हैं। ओला हावर्ड ने न्यूयॉर्क में 2013 में डॉक्टर ग्रेन कॉटनी से शादी कर ली थी, अब उनकी शादी को आयरलैंड में भी मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने बीबीसी को बताया।
The referendum has meant I now feel an equal citizen. I now feel that society has actually said, okay.
जनमत संग्रह का मतलब था कि मैं अब बराबरी के दर्जे की नागरिक हूँ। मुझे लग रहा है कि समाज ने कह दिया है कि ठीक है, तुम जैसे हो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, और ये नया एहसास है और अविश्वसनीय भी। ये थे ओला हावर्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पूर्वी सीरिया में करीब 100 तेल से भरी लॉरियों को उड़ाने का दावा किया है। पेंटागन ने कहा है कि सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले अल्बू कमल शहर के पास एक सैनिक छापे में गठबंधन सेना ने 100 लॉरियों को एक साथ उड़ा दिया है। इस्लामिक स्टेट अपने कब्जे वाले इलाके में तेल के कारोबार से लाखों डॉलर कमाता है और गठबंधन सेनाएं इस्लामिक स्टेट की आर्थिक ताकत तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। नेपाल के फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पर फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश थापा पर फीफा की कार्यकारिणी में एशियाई प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। गणेश थापा नेपाल के सांसद भी हैं और नेपाली अधिकारी भी उनसे देश में फुटबॉल के विकास के लिए दिए गए लाखों डॉलरों की गड़बड़ी के लिए पूछताछ कर रहे हैं। गणेश थापा ने बीबीसी को बताया कि वो प्रतिबंध के खिलाफ अपील करेंगे। म्यांमार में पिछले हफ्ते हुए ऐतिहासिक चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। इसमें नए चुने गए सांसद शामिल नहीं होंगे। निवर्तमान सांसद जनवरी तक सांसद बने रहेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। आज पेरिस हमलों में शिकार हुए लोगों की याद में फ्रांस में एक मिनट के लिए राष्ट्रव्यापी मौन रखा गया। शुक्रवार को हुए इन हमलों के बारे में फ्रांस ने कहा है कि इन हमलों की योजना सीरिया में बनाई गई थी, जहां इस्लामिक स्टेट मजबूती के साथ सक्रिय है। फ्रांस की वायुसेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में हवाई हमले भी किए हैं। इस बीच जांचकर्ताओं ने 2 और हमलावरों के नाम जारी किए हैं और फ्रांस की पुलिस ने देश भर में तकरीबन 150 संदिग्ध जगहों पर छापे मारे हैं। फ्रांस में हुए इन हमलों से जुड़े बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ हैं रोहित जोशी।
सोमवार को फ्रांस में पूरे देश भर में हमले के शिकार हुए लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। इसके लिए सोरबोन विश्वविद्यालय में हुए आयोजन में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद थे। जब एक मिनट का मौन पूरा हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने फ्रांस का राष्ट्रगान गुनगुनाया। शुक्रवार को हुए हमले के बाद से पेरिस में लोग दहशत में हैं। ये दहशत पेरिस में हुई एक प्रार्थना सभा में भी दिखाई दी, जब अचानक से लोगों को ये भ्रम हुआ कि फिर से हमला हो गया है। हाथों में मोमबत्तियां और गुलदस्ते पकड़े लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस बार ये एक भ्रम था, कोई हमला नहीं हुआ था। हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने तुरंत इलाके को घेर लिया। उधर फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वेल्स का इस्लामिक स्टेट की ओर से हुए इन हमलों के बारे में कहना है कि इस हमले की योजना सीरिया में बनाई गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों में इस तरह के और भी हमलों को अंजाम देने के लिए योजना बनाई जा रही है।
La vérité, la lucidité, nous oblige à dire.
सच ये है कि जैसा हम महीनों से कह रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हैं। हालांकि हमने कई हमलों को नाकाम भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी हमले हो सकते हैं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन आज हर कोई इस बात को जानता है। इन खतरनाक दिनों के बाद फिर से लोग अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल लौट रहे हैं और जिंदगी बेशक ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन सच ये है कि हम एक आतंकी दहशत के बीच जी रहे हैं और लंबे समय तक ऐसे ही जीना होगा और हमें इसके खिलाफ हरदम तैयारी भी रखनी होगी।
ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वेल्स के शब्द। फ्रांस की पुलिस ने पूरे फ्रांस में संदेह वाली तकरीबन 150 जगहों में छापे मारे हैं। इन छापों के दौरान पेरिस के उत्तर पूर्वी हिस्से के उपनगर बोबिनी में एक ठिकाने को इन हमलों से सीधे तौर पर जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसियों को बताया है कि बोबिनी में मारे गए छापे के दौरान वहां मिली चीजों से संकेत मिले हैं कि ग्रेनोबल, टुलूज और ल्यों शहर भी चरमपंथियों के निशाने पर थे। यहाँ से पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर सोमवार को जांचकर्ताओं ने दो और हमलावरों की शिनाख्त की है। इनके नाम अहमद अल मोहम्मद और सेमी एमिमोर बताए गए हैं। इससे पहले रविवार को 5 हमलावरों की पहचान कर ली गई थी। ब्रसेल्स में पैदा हुए सलाह अब्देस्लाम नाम के 26 साल के युवक को फ्रांस की पुलिस ने प्रमुख संदिग्ध माना है। उधर यूरोप में कुछ दक्षिणपंथी धड़ों की ओर से ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं, जिनमें पेरिस हमलों का जिम्मेदार यूरोप में सीरिया से आ रहे प्रवासियों को बताया जा रहा है। इन आवाजों को कड़ी फटकार लगाते हुए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने कहा है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
लोग अपने बच्चों का हाथ थामे शरीर में पहने हुए कपड़ों के साथ सीरिया से भाग रहे हैं। वे लोग इस्लामिक स्टेट से भाग रहे हैं जो इन हमलों का जिम्मेदार है। वे भी उसी आतंक से डरकर भाग रहे हैं जिसे हमने यहाँ झेला है। ये उनकी हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। उन लोगों पर इल्जाम लगाना, पीड़ितों को अपराधी बताना है और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
इस बीच फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर पर हवाई हमले किए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस कार्रवाई में फ्रांस के 10 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और आईएस के ठिकानों पर 20 बम गिराए गए। इन हमलों में आईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद का डिपो और लड़ाकों का एक शिविर भी शामिल है।
फ्रांस में 150 जगहों पर छापे। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में यादगार भूमिका निभाने वाले सईद जाफरी का 86 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। जाफरी ने भारत और ब्रिटेन की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। गांधी फिल्म में उन्होंने सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीबीसी हिंदी सेवा से भी उनका निकट का नाता था और फिल्मों में आने से पहले वो अक्सर बीबीसी के बुश हाउस स्टूडियोज आया करते थे। सईद जाफरी को श्रद्धांजलि दे रही हैं इंदु पांडे।
बॉलीवुड बॉलीवुड की कई फिल्मों में पिता और चाचा जैसे किरदारों में नजर आने वाले सईद जाफरी को आपने कई हिंदी फिल्मों में जरूर देखा होगा। राम तेरी गंगा मैली के कुंज बाबू को भला कौन भूल सकता है।
आइए कुंज बाबू आइए।
आने में बड़ी देर लगा दी आपने।
कहीं देर न हो जाए इसीलिए जल्दी आया हूँ। इस संगीत की रात में गाने के लिए मीरा को ढूंढना पड़ा।
इसी फिल्म के लिए सईद जाफरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था जिसमें वो मौसा बने थे।
और सैया जी उतरेंगे पार नदिया।
एक ऐसा अभिनेता जो अपनी एक अलग पहचान रखता है बॉलीवुड में, 86 साल की उम्र में हम सबको इस दुनिया से अलविदा कह के चला गया। हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट इनको याद करते हुए कहते हैं,
भाई सईद जाफरी साहब तो हमारे एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स थे फिल्म इंडस्ट्री के, और उनके अंदर वो जो एक मिश्रण था विदेशी कल्चर की सोच की, जो एक गाय कंपोनेंट हमारे हिंदुस्तानी तहजीब के साथ का जो उसके साथ मिक्सचर था, वो उनकी अनोखी एक अदा थी, उनकी जो नजर आती थी पर्दे पे।
और उनकी इसी अदाकारी ने सबको प्रभावित किया, जैसे कि बॉलीवुड के कई निर्देशक और डायरेक्टर ऐसे रहे जिन्होंने अपनी फिल्मों में सईद जाफरी को लिया। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ उनको याद करते हुए कहते हैं,
गुलाम लक्ष्मण में बहुत वक्त साथ में गुजारे और बाहर भी अपने नाम को उन्होंने अच्छी तरह से जमा के रखा था।
सत्यजीत रे ने उनको शतरंज के खिलाड़ी में लिया और इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। साथ ही फिल्म गांधी, मासूम, मंडी, दिल, त्रिमूर्ति सहित दर्जनों फिल्मों में काम किया और दर्शकों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई। राकेश बेदी का कहना है,
रियली वेरी शॉक्ड, ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने जो चश्मे बद्दू का किरदार निभाया था वो एक अपने आप में एक यादगार है, लोगों के दिल में हमेशा रहेगा। और भी बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट।
अभिनेता सईद जाफरी का जन्म 8 जनवरी 1929 को पंजाब में हुआ था। सईद जाफरी ने भारतीय फिल्मों के अलावा कई ब्रिटिश फिल्मों में भी काम किया, साथ ही उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। सईद पहले भारतीय थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड मिला था। फिल्म अभिनेत्री गुड्डी मारुति के साथ उन्होंने एक पंजाबी फिल्म में काम किया था। अपने उस काम के दौरान की यादों को साझा किया गुड्डी मारुति ने।
It was a nice experience because we were traveling together for the location that was in Luthiana. हम लोग अमृतसर उतरे, so he was very eager to see the Golden Temple, and of course he was a great actor.
राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो।
अपने हरफन मौला अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता सईद जाफरी को बीबीसी की तरफ से श्रद्धांजलि। इंदु पांडे, बीबीसी दिल्ली।
अस्सी के दशक में हमारे पुराने साथी नरेश कौशिक ने सईद जाफरी के साथ एक दिलचस्प बातचीत रिकॉर्ड की थी। आइए सुनते हैं इस बातचीत के कुछ अंश।
आपने अपना अभिनय जीवन हालांकि भारत में शुरू किया था, लेकिन उसका जो पहला विकास है वो अमेरिका में हुआ है, और आप उसके बाद यहाँ लंदन आए, लेकिन आपने हॉलीवुड की फिल्मों में काम यहाँ आने के बाद शुरू किया।
हाँ।
वो अनुभव किस तरह का था, आपने जो इससे पहले जो काम किया था उससे, और ये हॉलीवुड की फिल्मों का अनुभव ये किस तरह से अलग था?
सन 74 जो था वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। हॉलीवुड की फिल्में जैसे द विल बी कंस्पिरेसी, जैसे द मैन हु वुड बी किंग, यू नो, शॉन कॉनरी या माइकल केन के साथ, ये जो थी उसके बाद आई, और मोरक्को में उनकी फिल्मिंग थी, तो कभी मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं जाऊंगा हॉलीवुड और वहां अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैं न्यूयॉर्क में 8 साल रहा, और न्यूयॉर्क में ज़्यादातर थिएटर मैंने किया, और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। हर एक्टर को थिएटर की ट्रेनिंग चाहिए। हॉलीवुड मेरे पास आया, मैं हॉलीवुड के पास नहीं गया।
सईद जाफरी, आपने भारतीय फिल्मों में बहुत देर के बाद प्रवेश किया और बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो पहली फिल्म है
शतरंज के खिलाड़ी
वो आपकी पहली और आखिरी सबसे अच्छी फिल्म है।
नहीं, उसके अलावा भी अच्छी फिल्में थी। शतरंज के खिलाड़ी के लिए बड़ा लुत्फ आया हरी भाई के साथ काम करके और अपने
संजीव कुमार के साथ
और सत्यजीत राय साहब के साथ काम करके, एक पुराना ख्वाब था जो पूरा हुआ।
आपने बम्बई के फिल्मों में, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी तो बम्बई की फिल्म नहीं थी, सत्यजीत रे की फिल्म थी, अलग तरह की फिल्म थी, आपकी पहली बम्बैया फिल्म जिसे कह सकते हैं चश्मे बद्दूर थी, और इसमें भी ये बात सच है कि आपको बम्बई ने ढूंढा, आपने बम्बई को नहीं ढूंढा।
हमने नहीं ढूंढा।
लेकिन ये कैसे अचानक हुआ?
साई परांजपे से यहाँ मुलाकात हुई थी आपकी बुश हाउस में, तो गुल आनंद मरहूम, उन्होंने टेलीफोन किया, सही साहब सेंट्रल कैरेक्टर हमारी फिल्म में है, साई परांजपे से आप मिल चुके हैं, वो एक पान वाले का रोल है और हम चाहते हैं कि आप वो पान वाले का रोल करें, उसमें फारूक शेख है, दीप्ति नवल है, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे आपके लिए। कहने का हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम आपका टिकट भिजवाएं। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप वो सर रिचर्ड एटनबरा के लिए, गांधी के लिए आ रहे हैं, पटेल का रोल करने के लिए, तो आप उन्हीं से कह दीजिए कि डेढ़ महीने पहले आपको भेज दें। तो मैंने डिकी एटनबरा को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि डार्लिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास टिकट इज देयर फॉर यू, यू गो व्हेनेवर यू वांट, मगर 6 दिसंबर को आप हमारी यूनिट में आ जाएं। मैं गया वहाँ। अच्छा, वहाँ साई परांजपे ने वो जब पढ़ के सुनाया स्क्रिप्ट, मैंने कहा कि यार ये बम्बई बनारस का पान वाला आप क्यों कर रही हैं इसको? तो उन्होंने कहा हाँ, कहा भैया हम तो बनारस के पनवा की दुकनिया है। मैंने कहा ये सब कर चुके हैं यार, बस आप मेरे साथ आइए। मैं उनको जामा मस्जिद ले गया और वहाँ एक बुंदू पान वाले थे। तो मैंने कहा कि मियाँ वो बुंदू खां कहाँ हैं? तो कहने लगे इनका तो इंतकाल हो गया, मैं ही चला रही हूँ। मैंने इनसे कहा कि इस तरह से वो बात करेंगे, ये पान वाला जो है जामा मस्जिद में रहता है, बीवी है, कोई बच्चे नहीं है, निज़ामुद्दीन में इसकी दुकान है, और ये जो है फारूक शेख वगैरह ये सिर्फ उसके बच्चे हैं, उनको डांट भी सकता है मगर उनको उधार भी दे सकता है, और आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं उसको दिल्ली की जबान में लिखूंगा,
पुरानी दिल्ली,
कविन्ने पुरानी दिल्ली, कविन्ने गाँव आता तमनचे चल रहे, इस तरह से। तो इसी तरह से हुआ। उसके बाद अपने शेखर कपूर की फिल्म थी मासूम, तो उसमें भी यही हुआ। तो गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था, मगर सूरी साहब में पंजाब की झलक नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं उसको पंजाबियाइज कर दूँगा। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ओ मैं क्या ला छड़ते ही डबल पटियाला पैग, यू नो, इस तरह से।
आपके बम्बई की फिल्मों में जो आपके अनुभव रहे हैं, आप अपनी किताब में काफी इमोशनल होके काफी भावुकता से राज कपूर साहब का जिक्र करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, राज कपूर साहब के साथ इतना लुत्फ आता था मुझे, जेनिफर को, मुझे और राज कपूर साहब को, कितनी खूबसूरत शामें हम लोगों की गुजरी, और हम दोनों एक दूसरे को हुजूर कहते थे, और इतना लुत्फ आया था उनके साथ। क्योंकि राम तेरी गंगा मैली में जो कुंज मौसा का रोल जो था, मैं आपको एक कहानी बताऊं, शायद आपको पसंद आए
जी,
क्योंकि उसी ज़माने में 1985 में हनीफ कुरैशी की जो राइटर है यहाँ, हनीफ कुरैशी, उसने एक फिल्म लिखी थी माई ब्यूटिफुल लॉन्ड्रेट,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी हिट हुई,
बहुत हिट हुई, टिपिकल क्लासिक है जैसे। तो मैंने उनको यहाँ से टेलीफोन किया, राज साहब को, मैंने कहा हुजूर, सईद जाफरी बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राम तेरी गंगा मैली के लिए मैं बम्बई आऊँ तो मैं फ़ौरन आ जाऊँगा, मगर एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने चैनल 4 के लिए की है, हनीफ कुरैशी की लिखी हुई, उसमें डैनियल डे लुइस है और मैं हूँ, और हम लोगों को एडिनबरा फेस्टिवल में बुलाया। तो कहने लगे कि हुजूर बसत शौक चले जाइए एडिनबरा, यहाँ आने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंज मौसा करोड़ों हिंदुस्तानी दिलों में बैठ चुके हैं। अब बताइए ना, हाउ कैन आई नॉट लव अ मैन लाइक दैट।
सईद जाफरी के साथ बात कर रहे थे हमारे पुराने साथी नरेश कौशिक।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारी बरसात से जूझ रहे चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दबाव का क्षेत्र कम हो रहा है और दक्षिण भारत में भारी बारिश कर रहे बादलों ने अब आंध्र प्रदेश और श्रीलंका की तरफ रुख किया है। इस बीच इन इलाकों में भारी बारिश के चलते 59 लोगों की मौत की खबर है। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले 10 दिनों में चेन्नई के निवासी भारी बारिश के चलते बहुत ही परेशान हैं। बंगाल की खाड़ी में गहरा अवसाद क्षेत्र बन जाने से चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य जिलों में भारी बारिश हो रही है। सुनते हैं चेन्नई के निवासी सुंदरी रविशंकर क्या कहती हैं। यहाँ बेतहाशा बारिश हुई है, लेकिन यहाँ की कॉरपोरेशन ने जमा हुए पानी को निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मेरे अशोकनगर के इलाके में बारिश का इतना पानी कभी नहीं रुका है, और यहाँ जमा हुए पानी से बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। हम पानी का पंप भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजली भी बंद है, और पीने के लिए भी जो पानी हमें मिलता है उसमें मिट्टी होती है। मैं खुद बुखार से परेशान हूँ। ये थे सुंदरी रविशंकर के शब्द। सुंदरी रविशंकर जिस इलाके में रहती हैं वह कोई निचला इलाका नहीं है। अगर उनकी मुसीबतें इस तरह की हैं तो चेन्नई के दूसरे इलाकों की क्या हालत होंगी ये समझा जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अब कम हो रहा है। चेन्नई के मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एस आर रमनन कहते हैं,
एक्चुअली देयर इज नो डिप्रेशन एट ऑल, इट्स ओनली वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, एक्चुअली इट हैज मूव्ड अ लिटिल बिट नॉर्थवेस्ट।
अब गहरा अवसाद नहीं है, ये अब पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि बादल आंध्र प्रदेश और श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ बारिश कम होगी। अगले दो दिन में शायद 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश होने की आशंका है। ये थे डॉक्टर रमनन के शब्द। इसके बावजूद चेन्नई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिन कॉलेजों में परीक्षाएं होनी थी वे भी स्थगित कर दिए गए हैं। भारी बारिश से हुई परेशानी से निजात पाने के लिए सुंदरी रविशंकर जैसे निवासियों को शायद 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक के लिए ये सिर्फ कैन पानी पीने को मजबूर हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और वंदना।
श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी और आज मेरे साथ हैं वंदना। वंदना जी, आपको बहुत लोग अक्सर पूछते रहते हैं।
जी जी।
तो पहली चिट्ठी प्रदीप सिंह की है, कुमारगंज फैजाबाद से। इन्होंने ईमेल भेजा है, लिखते हैं कि पिछले दिनों सुशीला सिंह द्वारा प्रस्तुत दिनभर शुक्रवार 13 नवंबर को जो पेश किया गया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इन्होंने प्रगति सक्सेना की जो विवेचना थी इप्टा पर उसकी भी तारीफ की है और पूरी टीम को धन्यवाद दिया है।
जी, हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये कि आपने समय निकाला, ईमेल लिखा और आपको कार्यक्रम अच्छे लगे और विवेचना अच्छी लगी, और कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहें।
जी, लेकिन इसी ईमेल में इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया बोल कार्यक्रम में जो पेरिस पर अभी हमला हुआ है वो पूरा कार्यक्रम हमले का शिकार हो गया और उसकी जो भरपाई हुई वो रेहान फजल की बढ़िया प्रस्तुति ने की। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
जी, जाहिर है जैसा सब जानते हैं जो बहुत दुखद हुआ जो पेरिस में है, और बहुत बड़ा हमला था। तो ऐसे में कई बार पहले भी हो चुका है जब इतनी बड़ी घटना रहती है तो कभी कभी इंडिया बोल जैसा कार्यक्रम हमें उस दिन उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसकी भरपाई इन्होंने कहा कि बढ़िया प्रस्तुति से की रेहान फजल से। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जो एक खबर की अहमियत को समझते हुए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्यों ऐसा करना पड़ा।
हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार ईमेल्स लिखते रहते हैं मोहम्मद जीशान नैयर बेगूसराय बिहार से। लिखते हैं कि पीएम मोदी की यूके विजिट की जो कवरेज थी वो बीबीसी हिंदी ने इंडियन मीडिया की तरह की है। वॉशिंगटन से ब्रिजेश उपाध्याय को बुलाया गया, क्या आपकी अपनी टीम में बीबीसी हिंदी में कोई ऐसा नहीं था? ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है और इसकी उम्मीद नहीं थी।
जी, एक तरह से इन्होंने सवाल उठाया, बहुत शायद अच्छा किया। देखिए, एक तो ये जो दौरा था वो भारत के हिसाब से जो राजनीतिक जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, और 10 साल बाद कोई भारत से प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो ये जो बीबीसी हिंदी जो माध्यम है वो काफी फैल गया है। बीबीसी हिंदी रेडियो के अलावा इसमें डिजिटल ऑनलाइन है, एक सोशल मीडियम है, बीबीसी हिंदी का टीवी कार्यक्रम आता है, बीबीसी के जो तमाम दूसरी भाषाएं हैं उसमें भी हमारे संवाददाता अपनी अपनी भूमिका देते हैं। तो काफी व्यापक बहुत बड़ा बीबीसी फैला हुआ है हिंदी में भी, तो बहुत सारे संवाददाताओं की जरूरत थी उसमें
विभिन्न प्लेटफॉर्म्स
की। तो ये समझना होगा, इस वजह से हमें एक संवाददाता बाहर से भी बुलाना पड़ा
जी। और प्रगति सक्सेना की पहली जो विवेचना इप्टा पर उन्होंने पेश की उसकी काफी तारीफ कई सारे लोग कर रहे हैं। जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से लिखते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सुश्री प्रगति सक्सेना जी की पहली विवेचना थी, उन्हें धन्यवाद कहिएगा
जी। पहले तो जंग बहादुर जी तो बहुत सजग और पुराने श्रोता है और उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना कि ये वाकई उनकी पहली विवेचना थी और इन्होंने सुना और इनको अच्छी लगी और तमाम दूसरे श्रोता भी हैं जिन्होंने काफी तारीफ की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह विवेचना नए नए विषयों पर लाते रहेंगे।
और वंदना, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे श्रोता जो हैं कार्यक्रमों के बारे में ना लिखकर मुद्दों के बारे में और मसलों के बारे में लिख देते
हैं देश में।
तो उसी तरह से मंटू कुमार का एक मेल मैं देख रही हूँ मोतिहारी पूर्वी चंपारण से, इन्होंने लिखा है और लालू और नीतीश के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है लेकिन हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं लिखा।
जी, एक तो धन्यवाद तो कहूंगी कि आपने समय निकाला और लिखा चिट्ठी, लेकिन एक गुजारिश भी रहेगी कि अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में अच्छा बुरा जो भी है तारीफ आलोचना लिखें तो शायद ज्यादा वो सकारात्मक होगा।
आखिर में मैं एक ईमेल लूंगी, प्रेम सिंह का ये ईमेल है, इन्होंने अपना कहाँ से लिखा है ये लिखने की बजाय अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है और लिखते हैं कि सादर अभिनंदन, मैं काफ़ी लंबे वक्त से आपके न्यूज़ पोर्टल पर खबरें पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों से आपकी खबरें और बाकी तरह के लेखों में शब्दों और मात्राओं से संबंधित गलतियाँ दिखाई देती हैं। आपके लेखों में इस तरह की गलती दिखना वाकई हैरानी भरा है, इसका एक उदाहरण भी इन्होंने
लिंक भेजा है।
जी हाँ, लिंक भेजा है
जी। पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है चाहे वो रेडियो प्रसारण हो या फिर वो हमारा ऑनलाइन हो, अगर इस तरह की गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और कोशिश हमेशा रहेगी बिल्कुल कि इसे दुरुस्त किया जाए, आगे ये इसका दोहराव ना हो और इसके प्रति सचेत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वंदना, अब और वक्त नहीं है और चिट्ठियां लेने का, हम श्रोताओं को अपना पता बताएंगे।
बिल्कुल बताइए।
तो जो हमारे श्रोता चिट्ठी लिखकर भेजना चाहें वो लिख सकते हैं बीबीसी हिंदी पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 नई दिल्ली 110003 और अगर ईमेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं hindi.letters@bbc.co.uk पर।
तो इसके साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
ये थे आपके पत्रों के उत्तर। अब नजर डालते हैं खेल समाचारों पर आदेश कुमार गुप्त के साथ।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलोर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी बारिश का साया मंडराया और लगातार दूसरे दिन एक भी गेंद किए बिना समय बीत गया। कल का खेल भी बारिश के कारण रद्द हो गया था। इससे पहले केवल पहले दिन का खेल हुआ जहां दक्षिण अफ्रीकी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बना सकी और उसके बाद भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। अब मैच भले ही रुका हुआ हो और बेंगलोर में बरसते पानी के बीच दोनों टीमें होटल में मौसम के खुलने का इंतजार कर रही हों, लेकिन शिखर धवन ने नाबाद 45 रन बनाकर चयनकर्ताओं के उस फैसले को सही साबित किया जिसके लिए उन्हें काफी माथापच्ची करनी पड़ी थी। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद उनके चयन पर तलवार लटक रही थी। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन बताते हैं,
जहाँ तक शिखर धवन का सवाल है, मुझे ये बिल्कुल पता है कि बहुत लेट डिसीजन लिया उन्हें इस मैच में खिलाने का। कुछ सोच ऐसी भी थी कि केएल राहुल की होम पिच है, बैंगलोर उनका होम ग्राउंड है और इन फॉर्म बैट्समैन है तो शायद उन्हें खिलाना चाहिए, लेकिन मुझे जैसी खबर मिली कि एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहते थे इंडिया की टीम मैनेजमेंट, दूसरा ये है कि अगर शिखर धवन चल पड़ते हैं तो एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है और वो डोमिनेटिंग बैट्समैन है जैसा हमने देखा।
उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां आज का चौथा दिन भी पर्थ के विकेट पर गेंदबाजों के लिए पथरीला साबित हुआ। आज स्टंप के समय ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 258 रन बना लिए थे। कप्तान स्टीव स्मिथ 131 और एडम वोजेस 101 रनों की शतकीय पारी खेलकर नाबाद थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अभी तक 212 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ये स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर का 12वां और वोजेस का दूसरा शतक रहा। आउट होने वालों में सलामी बल्लेबाज जॉय बर्न्स बिना खाता खोले, टिम साउदी और डेविड वार्नर 24 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 624 रनों पर समाप्त हुई। टेलर 290 रन बनाकर नाथन लियन की गेंद पर आउट हुए। उनकी इस विशाल पारी की बदौलत न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर 65 रनों की बढ़त मिली। वैसे इस टेस्ट मैच में अभी तक 6 शतक बन चुके हैं जिनमें वार्नर और टेलर के दोहरे शतक भी शामिल हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 193 रनों की बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी हैं।
अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। पेरिस हमलों की जांच कर रही फ्रांस पुलिस ने 167 जगहों पर छापे मारे हैं और फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कैजनोव ने बताया कि पूरे फ्रांस में करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आयरलैंड में आज से समलैंगिक शादियों को आधिकारिक रूप से अनुमति मिल गई है। 6 महीने पहले हुए जनमत संग्रह के बाद कानून में बदलाव की अनुमति मिली थी। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने पूर्वी सीरिया में करीब 100 तेल से भरी लॉरियों को उड़ाने का दावा किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था तिलक राज भाटिया ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।